معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ یہ پارٹ ون ہے۔ معزز نابینا خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے عمران سیریز کا ناول اناتھا۔ یہ ماورائی نمبر ہے۔ اس کے مصنف ظہیر احمد ہیں اور اسے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں محمد اظہر لطیف۔ عمران نے اٹھ کر ایک طویل جمائی لی اور یوں منہ چلانے لگا جیسے جگالی کر رہا ہو۔ ارے، یہ کمرے میں تاریکی کیوں ہے؟ عمران نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور اندھیرا بھی اس قدر گہرا تھا کہ واقعی ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں واقعی اندھیرا چھایا ہوا ہے، یہ جاگنے کے بعد ابھی میں نے آنکھیں ہی نہیں کھولی، عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا اور اپنی آنکھیں ملنے لگا۔ ارے باپ رے، میری آنکھیں تو کھلی ہیں، پھر یہ اندھیرا کیسا، اور وہ بھی اس قدر گہرا، عمران نے کہا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ لیکن اس قدر اندھیرے میں بھلا اسے کیا نظر آ سکتا تھا؟ لگتا ہے یا تو میں اندھا ہو گیا ہوں یا پھر ہلاک ہو گیا ہوں، کیونکہ ایسی تاریکی یا تو قبر میں ہوتی ہے یا پھر اندھے پن میں، عمران نے کہا۔ چند لمحے وہ اسی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا، پھر اس نے چیخ چیخ کر سلیمان کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ سلیمان، سلیمان، عمران نے حلق پھاڑ کر کہا۔ اسی لمحے ایک کھٹکا ہوا جیسے کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا ہو۔ سلیمان، یہ تم نے کمرے میں اس قدر اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ تم نے اس ماہ بجلی کا بل ادا نہیں کیا، یا پھر سے الیکٹرک پاور والوں نے ہفتہ ہفتہ لوڈ شیڈنگ بنانے کا پروگرام بنا لیا ہے؟ عمران نے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جہاں اس کے خیال میں سلیمان کھڑا تھا۔ مچا کا تارو باشی ہانگو ہا، اندھیرے میں ایک عجیب سی آواز سن کر عمران بری طرح چونک اٹھا۔ ہائے، یہ کیا؟ اندھیرے میں تمہاری آواز اور زبان بدل گئی ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آگومی شاری گا، وہی آواز پھر سنائی دی تو عمران حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ سلیمان، لگتا ہے اندھیرے کی وجہ سے تمہارے جسم میں کوئی خلائی مخلوق حلول کر گئی ہے۔ ایسی آوازیں مت نکالو، مجھے ڈر لگتا ہے، عمران نے کہا۔ توری گا بو تو گادا، اسی آواز نے پھر کہا۔ گدھا، تم نے مجھے گدھا کہا؟ تمہارے یہ اوقات، ایک جاہل گنوار اور احمق و قصردار مجھے، یعنی علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن کو گدھا کہے؟ ارے گدھے ہو گئے تم، عمران نے غصے لہجے میں سلیمان کو کوسنے لگا۔ مانم گادا گادا، وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ پھر سے تم نے مجھے گدھا کہا؟ ابے تو گدھا، گدھا گدھا، ابے ایک بار نہیں، میں تجھے ہزار بار گدھا کہوں گا، عمران نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو اسی لمحے ایک کھٹکا ہوا اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے سلیمان دروازے سے نکل گیا ہو اور اس نے دروازہ بند کر دیا ہو۔ ارے رکو گدھوں کے سردار، مہا گدھے، کہاں جا رہے ہو؟ رک جاؤ، عمران نے چیختے ہوئے کہا اور اچھل کر بستر سے نیچے آ گیا۔ مگر زمین پر آتے ہی اس کا پیر زمین کر کے ابھرے ہوئے حصے سے ٹکرایا اور وہ خود کو سنبھالتے سنبھالتے بھی گر پڑا۔ اس نے جلدی سے دونوں ہاتھ آگے کر دیے تھے، ورنہ یقینی طور پر اس کے چہرے کا بھرتا بن جاتا۔ اور پھر عمران واقعی حیرت بھرے انداز میں زمین کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے لگا۔ ارے یہ کیا؟ عمران کے منہ سے حیرت بھرے انداز میں نکلا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی ٹوٹے پھوٹے کچے فرش پر ہو۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے اٹھا اور اس طرف بڑھا جس طرف سے اس کے ساتھ کوئی عجیب سی زبان میں باتیں کر رہا تھا۔ وہاں ایک لکڑی کا دروازہ تھا جسے ہاتھ لگاتے ہی عمران نے محسوس کر لیا تھا۔ ارے باپ رے، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ میرا کمرہ تو نہیں ہے، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو رات اپنے کمرے میں ہی سویا تھا، عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے دروازے کو ٹٹول کر دیکھا، مگر دروازے پہ کوئی ہینڈل نہیں تھا، نہ ہی وہاں اسے کسی چٹخنی کا پتہ چل رہا تھا۔ دروازہ شاید باہر سے کھلتا تھا۔ عمران بھوک اندھیرے میں کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ چاروں طرف کی دیواروں کو ٹٹولنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ لکڑی کے بنے ہوئے کوٹری نما کمرے میں موجود ہے۔ जहां एक चारपाई के सिवा और कुछ नहीं। मगर मैं यहाँ आया कैसे? इमरान के जहन में सवाल उभरा। उसे अच्छी तरह याद था कि वो फ्लैट में रात गए लौटा था। रात को देर से आने की वजह से उसने कॉल बेल बजाकर सुलेमान को जगाना मुनासिब नहीं समझा था, इसलिए उसने दरवाजे के पास मौजूद एक खुफिया जगह से चाबी निकाली और लॉक खोलकर अंदर आ गया। और फिर वो सीधा अपने कमरे में आ गया। जीरो पावर का बल्ब ऑन करके उसने लाइट बुझा दी और फिर जूते उतारकर बेड पर दराज हो गया। और सारा दिन चूंकि आवारा गर्दी करता रहा था, जिसकी वजह से वो बुरी तरह थक गया था। और ये शायद थकावट का ही असर था कि वो बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई। इमरान को ये भी याद था कि फ्लैट में दाखिल होकर वो दरवाजे को लॉक लगाना नहीं भूला था, ना ही उसे फ्लैट में किसी तब्दीली का एहसास हुआ था। अगर कोई इसे यहाँ बेहोश करके लाया था तो कम से कम इमरान को एहसास जरूर होना चाहिए था। वो चूंकि बाकायदगी से योगा की खास मशकें भी करने का आदी था, इसलिए अगर किसी ने कमरे में इमरान को बेहोश कर देने वाली गैस भी छोड़ी हो तो इसका इल्म इमरान को फौरी हो जाता। लेकिन सारी रात वो सुकून से सोया था। उसके शऊर और लाशऊर में ऐसी कोई बात उजागर नहीं हो रही थी जिससे उसको पता चलता कि रात उसे बेहोश करने के लिए कोई कार्रवाई की गई थी। अगर मुझे बेहोश नहीं किया गया तो फिर मैं यहाँ कैसे आ गया? और ये जगह कौन सी है? और मुझे यहाँ लाने वाला कौन है? उसके अलावा मुझे यहाँ लाने का मकसद क्या है? इमरान के जहन में लातादाद सवालात गर्दिश करने लगे। इससे पहले कि वो मजीद सोचता, उसे दोबारा दरवाजे के बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। वो किसी ख्याल के तहत तेजी से पीछे हट गया और चारपाई पर जाकर बैठ गया। उसी लम्हे दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज उभरी और इमरान को यूं महसूस हुआ कि जैसे इस बार कमरे में दो अफराद दाखिल हुए हों। शारी कानाजी तारू, उसे वही पहली वाली आवाज सुनाई दी। एरा एरा गोमोशो नीगा, इस बार दूसरी आवाज सुनाई दी जो बेहद करख्त और तेज थी। शायद पहले शख्स ने दूसरे शख्स को कुछ बताया था, जिसके जवाब में दूसरे शख्स ने सख्त लहजे में जवाब दिया था। कौन हो तुम? इमरान ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद उस तरफ देखने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा जहां से उसे आवाजें आ रही थी। आमिरान ताम को हाश आगा, इस बार नर्म आवाज वाले ने कहा और उसके अल्फाज सुनकर इमरान चौंक पड़ा। हाँ, मुझे होश आ गया है, मगर तुम कौन हो? इमरान ने संजीदगी से कहा। हम तुम्हारा दोस्त पालोग, हमारा नाम पालोग, नर्म आवाज वाले ने कहा। पालोग? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, ये हमारा नाम, इसी आवाज ने कहा। ओह, मगर यहाँ इस कदर अंधेरा क्यों है? क्या यहाँ रोशनी नहीं है? इमरान ने कहा। राशनी? ना ही, तुम मात घाबराओ, अभी राशनी हो जाता, पालोग ने कहा। मगर ये जगह कौन सी है और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? इमरान ने सर झटक कर कहा। न जाने क्या बात थी कि उसके जहन में खुद को एक अनजान जगह पाकर अजीब सी खल्फिशारी होना शुरू हो गई थी। वो पहले भी कई बार अगवा हुआ था, पहले भी कई बार वो अजीब व गरीब और नामालूम कैद खानों में कैद किया जा चुका था, लेकिन इससे पहले ना ही उसका दिल कभी इस तरह परेशान हुआ था, ना वो घबराया था। वो बड़े से बड़े और खौफनाक से खौफनाक मरहलों से गुजरा था, मगर इस तरह कभी उसके जहन में वसवसे नहीं उभरे थे। उसका मुखातिब गो इससे निहायत नरमी और हलीमी से बात कर रहा था, मगर इसके बावजूद इमरान को यूं महसूस हो रहा था जैसे उससे बात करने वाला कोई इंसान ना हो बल्कि दूसरी दुनिया का मखलूक हो। ये इमरान का एहसास था जिसे वो शिद्दत से महसूस कर रहा था। उसी लम्हे इमरान को यूं लगा जैसे पालोग ने ताली बजाई हो, और दूसरे ही लम्हे इमरान ने बौखला कर जल्दी से आंखें बंद कर ली। वहां अचानक इस कदर तेज सुर्ख रोशनी फैल गई थी जिसकी वजह से इमरान की आंखें खैरा हो गई थीं। इमरान को यूं महसूस हुआ था जैसे इस तेज रोशनी ने इसकी आंखों को जला दिया हो। उसे वाकई अपनी आंखों में तेज जलन का एहसास हो रहा था। वो दोनों हाथों से अपनी आंखें मलने लगा। आ पानी, आंखें खोलो आमिरान, पालोक की आवाज सुनाई दी तो इमरान ने आंखों से हाथ हटाकर आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली, मगर फिर उसे महसूस हुआ जैसे फिर से उसकी आंखों में आग सी भर गई हो। ओह, ये रोशनी बहुत तेज है, मेरी आंखें जल रही हैं, इमरान ने तेज लहजे में कहा। उसकी आंखें बंद थीं और उसने आंखों पर हाथ भी रखे हुए थे, मगर उसके बावजूद उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसकी हर तरफ सुर्खी ही सुर्खी फैली हुई हो। तेज रोशनी की वजह से उसे हाथों के खून की सुर्खी साफ दिखाई दे रही थी। राशनी तेज है। अच्छा रुको, मैं कम करता, पालोग ने कहा, और फिर इमरान को अपने हाथों की नजर आने वाली खून की सुर्खी सियाह होती हुई महसूस हुई। अब आंखें खोलो, पालोग ने कहा, तो इमरान ने हाथ हटाकर आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। इस बार उसे जलन का एहसास नहीं हुआ था। कमरे में मौजूद हल्की सुर्खी माइल रोशनी थी। आंखें खोलते ही इमरान के सामने मौजूद दो इंसानों पर नजर पड़ी तो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसकी आंखें हैरत की ज्यादती से फैलती चली गईं। वो दोनों लंबे तड़ंगे सियाफाम थे। एक तो दुबला पतला था मगर दूसरा बेहद तनुमंद तनोतोष का मालिक था। इन दोनों ने सुर्ख रंग के लंगोट बांध रखे थे। इन दोनों के सर गंजे थे और चेहरे दाढ़ी मूछों से आरी थे। जिस कदर इनके रंग सियाह थे, इनके होंठ उतने ही सुर्ख थे। यूं लग रहा था जैसे वो अभी अभी किसी जानवर का ताजा खून पीकर आए हों। इनमें से दुबले सियाह फाम के गले में बहुत सी मालाएं थीं। एक माला जानवरों की हड्डियों की मालूम होती थी, एक माला सियाह लकड़ी के बने हुए दानों की थी, और एक माला ऐसी थी जिसमें छोटी छोटी खोपड़ियां पिरोई हुई थीं। इन खोपड़ियों का रंग सफेद था। उसके हाथ में लकड़ी का एक नैजा था जिसके सिरे पर नोकीली और लंबी तेज धार बर्छी लगी हुई थी। दूसरे सियाह फाम के गले में मौजूद माला सियाह लकड़ी के दानों की थी। उसके हाथ में एक त्रिशूल था। इन दोनों के हाथों और पैरों में लोहे के मोटे मोटे कड़े भी मौजूद थे, और इस भारी तनोतोष के मालिक सियाह फाम के कानों में जर्द रंग की बालियां झूल रही थीं, और वो दोनों इमरान की जानिब देख रहे थे। इमरान ने देखा कि वो वाकई एक लकड़ी के बने हुए छोटे से कमरे में मौजूद था। कमरे में एक पुरानी चारपाई और इस पर बिछे हुए आरामदेह बिस्तर के सिवा और कुछ मौजूद नहीं था। कमरा चारों तरफ से बंद था। उसका सिर्फ एक दरवाजा था जिसके करीब वो दोनों सियाह फाम मौजूद थे। कमरे में रोशनी का अलबत्ता उसे कोई मंबा दिखाई नहीं दिया। यूं मालूम हो रहा था जैसे रोशनी लकड़ी की दीवारों से निकल रही हो। काया अब ठीक है, सियाह फाम ने इमरान की जानिब देखते हुए कहा, और उसकी आवाज सुनकर इमरान को अंदाजा हो गया कि बोलने वाला पालोग है। हाँ, इमरान ने इसी अजीबोगरीब और पुरेसरार माहौल को हैरत से देखते हुए कहा। जी ई तू मजागा, पालोग ने अपने साथी से अपनी मखसूस जबान में कहा, तो वह इस बात में सर हिलाकर मुअद्दबाना अंदाज में सलाम करके तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। ये कौन सी जगह है और तुम, इमरान ने पालोग की जानिब बदस्तूर हैरत ज्यादा नजरों से देखते हुए कहा। तारो आबी बात आता, पालोग ने हाथ उठाकर इमरान को जैसे सब्र की तलकीन करते हुए कहा। चंद ही लम्हों बाद भारी भरकम सियाह फाम वापस आ गया। इस बार उसके हाथों में त्रिशूल के बजाय एक प्याला था जिसमें से हल्की हल्की भाप निकल रही थी। पी तूगा, पालोग ने इसके हाथों में प्याला देखकर इस बात में सर हिलाते हुए इमरान की तरफ इशारा करते हुए कहा, जैसे वो सियाह फाम को कह रहा हो कि वो प्याला इमरान को दे दे। भारी भरकम सियाह फाम मुअद्दबाना अंदाज में सर हिलाकर दोनों हाथों में प्याला लिए इमरान के करीब आ गया। आमिरान ये सरदार जोजा का, ये पी लो, पालोग ने कहा। क्या है इसमें, इमरान ने पूछा। अगुमो, उसने कहा, और सरदार जोजाका ने प्याला इमरान की जानिब बढ़ा दिया। इमरान की नजर जैसे ही प्याले पर पड़ी वो बेख्तियार उछल पड़ा। खून उसके मुंह से निकला और उसका चेहरा नफरत और गुस्से से बिगड़ता चला गया। प्याला सुर्ख रंग के महरूल से भरा हुआ था और इसमें से बाकायदा भाप उठ रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो सियाफाम किसी जानवर को जिबा करके उसका ताजा खून प्याले में भरकर लाया हो। इमरान का हाथ हरकत में आया और दूसरे लम्हे सियाफाम के हाथों से प्याला निकलकर दूर जा गिरा। कच्चे फर्श पर गिरकर प्याला टूटा तो नहीं, मगर इसमें मौजूद सुर्ख महलूल जमीन पर गिर गया था, और साथ ही ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे अचानक जलती हुई आग पर पानी डाल दिया गया हो। सुर्ख धुआं सा उठा था और जमीन पर गिरने वाला सुर्ख महलूल यकलख्त वहां से गायब हो गया, जैसे पेट्रोल जमीन पर गिरकर हवा में तहलील हो जाता है। ये ताम ने क्या किया, अगोमो को गिरा दिया, ताम मरेगा, ताम मरेगा, ताम ताम पर अनाता का कहर टूटेगा, वो ताम को जलाएगा, तुम भस्म हो जाएगा। फालोग ने अचानक हलक के बल चीखते हुए कहा। उसके जिस्म में अचानक बेपनाह निर्दयतारी हो गया था। क्या बकवास है, तुम लोग कौन हो और ये सब क्या तमाशा है? इमरान ने फालोग की जानिब गुस्सैली नजरों से देखते हुए कहा। ताम मरेगा, ताम मरेगा, फालोग ने इसी बात का जवाब देने के बजाय मुसलसल एक ही राग अलापते हुए कहा, और फिर इसने अचानक अपने नेजे का रुख इमरान की जानिब कर दिया। इससे पहले कि इमरान कुछ समझता, अचानक फालोग के नेजे के सिरे से जर्द रंग की बिजली की सी लहर निकलकर इमरान के सीने से टकराई, और इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे फालोग ने यकलख्त उसके सीने पर हजारों मन वजनी गुर्ज दे मारा हो। उसके हलक से बेख्तियार दर्दनाक चीखें निकली और वो अपनी जगह से कई फीट ऊंचा उछलकर पीछे लकड़ी की दीवार से जा टकराया और फिर बुरी तरह नीचे आ गिरा। उसके साथ ही इमरान के जहन के रोशन दरीचे बंद होते चले गए। वो चंद लम्हे बुरी तरह तड़पता रहा और फिर साकित हो गया। बॉस, अचानक जोसेफ के हलक से जैसे दिलदोज चीख निकली और वो बुरी तरह बड़बड़ाता हुआ उठ बैठा। उसका जिस्म बुरी तरह लरज रहा था और आंखें फटी हुई थीं। उसका सिया रंग सरसों के फूल की तरह जर्द हो गया था। ओ फादर जोशुआ, ये मैंने कौन सा ख्वाब देखा है? बॉस, बॉस को देवी अनाता की भेंट चढ़ाया जा रहा है, शैतान अनाता देवी पर। ओ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, जोसेफ ने लरजते हुए लहजे में कहा। वो जल्दी से बेड से उतरा और उसने दीवार पर मौजूद स्विच दबाकर कमरा रोशन किया और दीवार पर लगे क्लॉक को देखने लगा, जिस पर रात के ठीक 2 बज रहे थे। ओह, ये वक्त तो अनाथा देवी के जागने का है, इसका मतलब है मैंने जो ख्वाब देखा है वो ख्वाब नहीं था। नीली झील के किनारों पर दर्द नागन के सुर्ख अंडे, इसका मतलब है अनाथा देवी की आंखें खुल गई हैं और वो बॉस की भेंट मांग रही है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं बॉस को अनाता देवी की भेंट नहीं बनने दूंगा, जोसेफ जैसे दीवानगी के आलम पर बड़बड़ा रहा था। फिर वो तेजी से साइड की मेज पर पड़े हुए फोन की जानिब लपका। इसने फोन का रिसीवर उठाया और जल्दी जल्दी इमरान के फ्लैट का नंबर मिलाने लगा। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज सुनाई देने लगी। ओह बॉस, फॉर गॉड सेक फोन उठाओ जल्दी, जर नागन के सुर्ख अंडे फटने वाले हैं, अगर अंडे फट गए तो हर तरफ तबाही और बर्बादी फैल जाएगी। इस खौफनाक तबाही से तुम्हारा वजूद भी हमेशा हमेशा के लिए फना हो जाएगा, जल्दी करो बॉस जल्दी, जोसेफ ने लर्जा बर अंदाम होते हुए कहा, मगर दूसरी तरफ मुसलसल घंटी बज रही थी जैसे फ्लैट में कोई ना हो। जोसेफ की फराक परेशानी पर लातादात चिकने फैल गई थी। दूसरी तरफ से फोन रिसीव ना होने की वजह से उसका चेहरा शदीद परेशानी से बिगड़ता जा रहा था। उसने क्रेडिट पर हाथ मारा और टोन आते ही उसने एक बार फिर इमरान के फ्लैट के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ फिर मुसलसल घंटी बजने की आवाज सुनाई देती रही, लेकिन शायद इमरान के साथ साथ सुलेमान भी फ्लैट में मौजूद नहीं था। जोसेफ ने परेशानी और झल्लाहट में एक बार फिर क्रेडिट पर हाथ मारा और टोन आने पर दूसरे नंबर प्रेस करने लगा। X2, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से X2 की आवाज सुनाई दी। इस बार जोसेफ ने दानिशमंद दिल के नंबर मिलाए थे। ताहिर साहब, मैं जोसेफ बोल रहा हूँ, जोसेफ ने जल्दी से कहा। इसके लहजे में शदीद बेचैनी और परेशानी के आसार थे। ओह जोसेफ, तुम रात को इस वक्त खैरियत है, और ये तुम्हारी आवाज क्यों लड़क रही है, क्या हुआ है? Black 0 ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस कदर रात होने के बावजूद Black 0 के अंदाज में खुमारी का शायबा तक नहीं था। ताहिर साहब, बॉस कहाँ है? जोसेफ ने पूछा। बॉस वो अपने फ्लैट में होंगे, मगर क्यों? Black 0 ने हैरतजदा लहजे में कहा। वो फ्लैट में नहीं है, मैंने फ्लैट में फोन किया था लेकिन बॉस ने फोन रिसीव नहीं किया और ना ही सुलेमान ने, जोसेफ ने जल्दी से कहा। फ्लैट पर इमरान साहब और सुलेमान फोन रिसीव नहीं कर रहे, ये कैसे हो सकता है, और तुम इस कदर घबराए हुए क्यों हो? Black 0 ने बदस्तूर हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस की जिंदगी खतरे में है ताहिर साहब, वो अनाता देवी की भेंट चढ़ने वाले हैं, जोसेफ ने परेशानी से भरपूर लहजे में कहा। क्या कहा तुमने? इमरान साहब की जिंदगी खतरे में है, Black 0 ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। हाँ, अनाता देवी की आंखें खुल चुकी हैं। दर्द नागन ने सुर्ख अंडे दिए हैं जो फटने वाले हैं, और इन अंडों के फटते ही हर तरफ खौफनाक तबाही फैल जाएगी। बॉस पर जमैका के काले गिद्ध हमला कर चुके हैं और वो बॉस को काले जंगलों में ले गए हैं। जोसेफ ने खौफ और परेशानी से कांपते हुए कहा। अनाता देवी, जर्द रंग, सुर्ख अंडे, जमैका के काले गिद्ध, ये तुम क्या क्या कह रहे हो? जोसेफ, तुम होश में तो हो? इसकी बात सुनकर ब्लैक जेरो ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैं होश में हूँ, बिल्कुल होश में हूँ। ताहिर साहब, आप जल्दी से यहाँ आए, मुझे आपको लेकर फौरन बॉस के फ्लैट में जाना है। जमैका के काले गिद्धों के निशान अभी भी वहां मौजूद होंगे। अगर हमें वहां देर हो गई तो वो निशान गायब हो जाएंगे, और निशान गायब हो गए तो हम बॉस को कभी नहीं पा सकेंगे। जोसेफ तो अपने खोए खोए और अजीब से लहजे में कहा। जोसेफ, लगता है इमरान साहब के मना करने के बावजूद तुमने फिर से शराब पीना शुरू कर दी है, जो तुम इस तरह बहकी बहकी बातें कर रहे हो, ब्लैक जीरो ने नागवार लहजे में कहा। फॉर गॉड सेक ताहिर साहब, ऐसा मत कहें। जोसेफ दी ग्रेट, बॉस के हुक्म से अपनी गर्दन तो काट सकता है। बॉस ने जब से मुझ पर शराब पीने की पाबंदी लगाई है, मैं उसे छूना तो दरकिनार, उसे देखना भी पसंद नहीं करता। आप मेरी बातों को गलत मत लें, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उस पर यकीन करें। बॉस की जिंदगी वाकई खतरे में है, जोसेफ ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। रुको, मैं फ्लैट पर खुद फोन करके देखता हूँ। जोसेफ की बात सुनकर ब्लैक जीरो ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद कहा, तो जोसेफ ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। उसे ब्लैक जीरो पर गुस्सा आ रहा था, जो उसकी बातों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ ब्लैक जीरो शायद दूसरे फोन से नंबर मिला रहा था। जोसेफ, वाकई फ्लैट से कोई फोन रिसीव नहीं कर रहा, वहां वाकई कोई गड़बड़ मालूम होती है। तुम रुको, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, चंद लम्हों बाद ब्लैक जीरो ने कहा। जल्दी करें ताहिर साहब, सुर्ख अंडों के फटने में वक्त बेहद कम रह गया है, जोसेफ ने परेशानी के आलम में होंठ भींचते हुए कहा। तो दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने फोन बंद किया, तो जोसेफ ने भी रिसीवर क्रेडिल पर डाल दिया। ओह फादर जोशवा, जोसेफ ने कहा और परेशानी के आलम में कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उसने जल्दी जल्दी राना हाउस का ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम ऑन किया, और फिर उसने एक बार फिर कमरे में जाकर चंद खुशबूदार मोमबत्तियों के पैकेट, अल्कोहल से पाक स्प्रे और मिट्टी का एक प्याला निकाल लिया। उसने ये चीजें एक थैले में डाली और फिर गेट से बाहर आकर बेचैनी से ब्लैक जीरो का इंतजार करने लगा। जो जो वक्त गुजरता जा रहा था, उसके चेहरे का तनाव बढ़ता जा रहा था। वो शदीद परेशानी के आलम में गेट के बाहर इधर उधर टहलते हुए ब्लैक जीरो का इंतजार करने लगा। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद ब्लैक जीरो वहां पहुंच गया। उसने आरजी मेकअप कर रखा था। कार को अपने करीब रुकते देखकर जोसेफ तेजी से घूमकर दूसरी तरफ आया और ब्लैक जीरो की साइड वाली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। जल्दी चलें, जोसेफ ने कहा, तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिलाकर कार आगे बढ़ा दी। वो गौर से जोसेफ का बिगड़ा हुआ चेहरा देख रहा था, जिस पर सोचो तफक्कुर के गहरे साए लहरा रहे थे और उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। तुम्हारे ख्याल में क्या मामला हो सकता है? ब्लैक जीरो ने गौर से जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा। मामला? कौन सा मामला? जोसेफ ने चौंक कर कहा, जैसे वो ब्लैक जीरो की मौजूदगी से कतई बेखबर हो। वही जो तुमने मुझे फोन पे बताया था, ब्लैक जीरो ने कहा। मैंने ख्वाब में काले जंगल के वस्त में मौजूद नीली झील को देखा था, जिसके किनारों पर हर तरफ सुर्ख अंडे पड़े हुए थे। सुर्ख अंडे जो मटर के दानों जितने थे, उन पर मैंने जर्द रंग के निशान भी देखे हैं, जिसका मतलब है कि वो जर्द नागन के अंडे हैं। और जर्द नागन जब भी नीली झील के किनारों पर अंडे देती है और उसके अंडे फटते हैं, तो हर तरफ अजीम तबाही और बर्बादी फैल जाती है। मैंने बॉस को जंगलों में भागते देखा है। फिर मैंने अनाथा देवी को देखा, जिसके ऊपर बॉस को लटका दिया गया। बॉस के सर, उसके शाने और उसके पेट पर मैंने सुर्ख क्रॉस के निशान देखे हैं, और उसके सामने तीन तीरंदाज मौजूद थे जो बॉस को तीर मारना चाहते थे। जैसे ही अनाता देवी की आंखें खुलेंगी, वो सियाफाम तीरंदाज बॉस को क्रॉस के निशानों पर तीर मारेंगे, और बॉस का सारा खून अनाता देवी पर गिरेगा, तो वो जिंदा हो जाएगी। अनाता देवी बॉस की भेंट लेकर जिंदा होना चाहती है, जिसे अफ्रीका के जंगलों के विच डॉक्टरों ने हजारों साल पहले अंधी मौत के हवाले कर दिया था। उसके वजूद को पत्थर का बना दिया था। अनाता देवी बहुत बड़ी शैतानी जुर्रियत है ताहिर साहब, वो इंसानों की को शैतान का पुजारी बना देगी। वो पहले भी ऐसा ही करती रही थी और अब भी ऐसा ही करेगी, जोसेफ ने ख्वाबनाक लहजे में कहा। क्या है मकाना बातें कर रहे हो? सबसे पहले पहली बात तो ये है कि तुमने महज एक ख्वाब देखा है, ख्वाब की कोई असलियत नहीं होती। दूसरे तुम बता रहे हो कि तुमने जर्द नागन के सुर्ख अंडे देखे हैं। तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं कि दुनिया में ऐसी कोई नागन नहीं जो सुर्ख अंडे देती हो, ब्लैक जीरो ने कहा। जंगलों के बारे में तुम कुछ नहीं जानते ताहिर साहब, दुनिया में बेशुमार जंगल तहय्युर और इसरार की सरजमीन कहलाते हैं। ऐसे जंगलों की हर चीज निराली और नाकाबले यकीन होती है। जहां आज भी विच डॉक्टरों की कमी नहीं, और इन विच डॉक्टरों के पास जो ताकतें हैं उनके मुकाबले में जदीद दुनिया की साइंस कोई अहमियत नहीं रखती। आप उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं, जोसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा। और तुम कह रहे थे कि इमरान साहब पर जमैका के काले गिद्ध हमला कर चुके हैं और वो उन्हें काले जंगलों में ले गए हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे जोसेफ की दिमागी हालत पर शक हो रहा हो, या फिर उसे जोसेफ की कोई बात समझ नहीं आ रही। हाँ, उल्टा लटके हुए बॉस के कंधों पर मैंने काले गिद्धों के पंजों के सियाह निशान भी देखे थे, जिसका मतलब है कि बॉस को जमैका के काले गिद्ध उठाकर जंगलों में ले गए हैं, जोसेफ ने कहा। ब्लैक जीरो ने हुनकारा भरते हुए कहा। उसे जोसेफ की हर बात में सिवाय हिमाकत और उसके जहनी इख्तरा के कुछ नजर नहीं आ रहा था। इस वक्त ब्लैक जीरो सिर्फ इसलिए वहां आ गया था कि उसने इमरान के फ्लैट पर उसके स्पेशल नंबर पर भी रिंग कर लिया था, मगर दूसरी तरफ से उसकी कॉल रिसीव नहीं की जा रही थी। स्पेशल फोन को या तो इमरान खुद रिसीव करता था या फिर अपनी गैर मौजूदगी में उसने सुलेमान की ड्यूटी लगा रखी थी कि वो इमरजेंसी की सूरत में बतौर X2 इस फोन को रिसीव किया करे, और अगर सुलेमान भी किसी वक्त किसी वजह से फोन को रिसीव ना करे तो इमरान इस वक्त फोन को एक कंप्यूटराइज मशीन के साथ मुंसलिक कर देता था। वो मशीन फोन करने वाले को अपना पैगाम रिकॉर्ड करने की हिदायत देती थी, मगर ब्लैक जीरो ने फोन किया तो उस फोन को ना इमरान ने रिसीव किया और ना सुलेमान ने, और ना ही उसका लिंक कंप्यूटराइज मशीन से हुआ, जिसकी वजह से ब्लैक जीरो भी परेशान हो गया था कि मामला गड़बड़ है। वरना इमरान किसी भी सूरत में खास तौर पर X2 के फोन पर गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं दे सकता था। किंग रोड पर आकर ब्लैक जीरो ने जैसे ही कार इमरान के फ्लैट के करीब रोकी तो जोसेफ ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और फिर तेजी से भागता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। लगता है इसका सचमुच दिमाग खराब हो गया है। काले गिद्ध, अनाता देवी, सुरखंडे, न जाने ये क्यों ऐसी बातें सोचता है। ब्लैक जीरो ने जोसेफ को इस तरह कार से उतरकर भागते हुए देखकर मुंह बनाते हुए कहा और कार का इंजन बंद करके बाहर आ गया। सीढ़ियां चढ़कर वो फ्लैट के करीब आया तो उसने जोसेफ को दरवाजे के करीब पाया। उसकी उंगली कॉल बेल पर जैसे चिपकी हुई थी। वो अंदर से मुसलसल घंटी बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। इस वक्त जोसेफ के आसाब तने हुए थे और उसका सियाह रंग और ज्यादा सियाह हो गया था। इसका चेहरा इस कदर भयानक नजर आ रहा था कि ब्लैक जीरो वाकई हैरान रह गया। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, जोसेफ ने कॉल बेल से उंगली हटाकर अचानक जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। वो हलक के बल चीख रहा था। क्या कर रहे हो जोसेफ? इर्द गिर्द के फ्लैटों में सोए हुए लोग हैं और तुम इस तरह दरवाजा पीट रहे हो, ब्लैक जीरो ने तेज लहजे में कहा। वैसे हैरत उसे भी हो रही थी कि जोसेफ जिस तरह कॉल बेल बजा रहा था, इमरान या सुलेमान को उठकर दरवाजा खोल देना चाहिए था। तो फिर मैं क्या करूं? जोसेफ ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। उसका लहजा सुनकर ब्लैक जीरो चौंक पड़ा। जोसेफ जैसा भी था, मगर वो इमरान की तरह उसकी भी उतनी ही इज्जत करता था, मगर इस वक्त उसका अंदाज बदला हुआ था और किसी ख्याल के तहत ब्लैक जीरो ने कहा कि पीछे हटो, मैं देखता हूँ, ब्लैक जीरो ने होठ चबाते हुए कहा। जोसेफ पीछे हटा तो ब्लैक जीरो ने आगे बढ़कर कॉल बेल के बटन पर उंगली रख दी। अंदर घंटी बजने की मुसलसल आवाज सुनाई दे रही थी, मगर ना ही अंदर से कोई आवाज सुनाई दी और ना ही दरवाजा खुला। अंदर गड़बड़ हो चुकी है ताहिर साहब, अब हमें इस दरवाजे को तोड़ना ही पड़ेगा, जोसेफ ने भर्राए हुए लहजे में कहा। नहीं, दरवाजा तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ब्लैक जीरो ने कहा। इसने दरवाजे के साइड के खुफिया खाने में हाथ डालकर चाबी निकाली और उसे दरवाजे के लॉक में लगाने लगा। एमरजेंसी की सूरत में ब्लैक जीरो कई बार वहां आ चुका था, इमरान ने उसे बता रखा था कि चाबी कहाँ होती है, इसलिए ब्लैक जीरो को वहां से चाबी निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ब्लैक जीरो ने लॉक खोला और हैंडल पकड़कर उसे घुमाते हुए दरवाजा खोल दिया। अंदर गहरी तारीकी छाई हुई थी। दरवाजा खुलते ही जोसेफ झपट कर अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद चट चट की आवाजों के साथ ही हर तरफ तेज रोशनी फैलती चली गई। जोसेफ ने अंदर जाकर लाइट्स ऑन कर दी थी। फ्लैट में मुकम्मल खामोशी थी। जोसेफ तेजी से इमरान के कमरे की तरफ बढ़ा। उसके कमरे का दरवाजा बंद था। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो यकलख्त ठिटक कर रुक गया, जैसे अचानक उसके पैरों को जमीन ने जकड़ लिया हो। ब्लैक जीरो हैरत भरी नजरों से चारों तरफ देख रहा था। फिर उसके कदम खुद ब खुद एक तरफ उठते चले गए। एक दूसरे कमरे के दरवाजे के करीब वो आकर रुका। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़कर घुमाया तो दरवाजा खुलता चला गया। दरवाजा शायद अंदर से लॉक नहीं था। ब्लैक जीरो ने दरवाजा खोल दिया। कमरे में अंधेरा था। ब्लैक जीरो ने दरवाजे के दाएं तरफ दीवार की तरफ हाथ बढ़ाकर स्विच बोर्ड तलाश किया और फिर एक बटन प्रेस किया तो कमरे में रोशनी भर गई। ब्लैक जीरो बिस्तर पर सोए हुए सुलेमान को देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा। सुलेमान बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में सो रहा था। ओह, सुलेमान तो यहीं है, फिर इसने फोन की घंटी और कॉल बेल की आवाज क्यों नहीं सुनी, ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा और तेजी से आगे बढ़ा। सुलेमान, ब्लैक जीरो ने सुलेमान को आवाज देते हुए कहा। कौन है, कौन है? सुलेमान ने हड़बड़ाकर उठते हुए कहा। उसने अपने कमरे में एक अजनबी को देखा तो वो और ज्यादा बौखला गया। उसने जल्दी से अपने सरहाने के नीचे हाथ डालकर एक पिस्टल निकाल लिया। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? सुलेमान ने पिस्टल ब्लैक जीरो के सामने करते हुए कहा। मैं ब्लैक जीरो हूँ सुलेमान, ब्लैक जीरो ने जल्दी से कहा। ओह, ताहिर साहब आप, और यहाँ इस वक्त? सुलेमान ने क्लॉक की तरफ देखते हुए कहा। मैं इतनी देर से फोन कर रहा था और फिर मैंने कॉल बेल भी बजाई, तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं खुद ही खुफिया खाने से चाबी निकालकर दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। मगर हैरत मुझे इस बात पर हो रही है कि इस कदर दरवाजा पीटने और कॉल बेल के बावजूद तुम नहीं नहीं उठे और यहाँ पड़े सोते रहे, जैसे तुमने आवाजें सुनी ही ना हो। क्या तुम इस तरह गहरी और बेहोशी की नींद सोते हो? ब्लैक जीरो ने हैरत और गुस्से से कहा। ओह नहीं ताहिर साहब, मैं तो बेहद होशियार सोने का आदी हूँ। मामूली सा खटका भी हो तो मेरी आंख खुल जाती है, मगर फोन कॉल बेल, हैरत है, मैंने ना फोन की घंटी सुनी और ना ही कॉल बेल की आवाज, और आप कह रहे हैं कि आपने दरवाजा भी पीटा था? सुलेमान ने हैरान होते हुए कहा। मैंने नहीं, जोसेफ ने। जिस तरह से वो दरवाजा पीट रहा था उसकी आवाज से इर्द गिर्द के फ्लैटों वाले लोग जाग गए होंगे। उनके बाहर आने की कसर रह गई थी कि मैंने जोसेफ को ऐसा करने से रोक दिया और खुफिया खाने से चाबी निकालकर अंदर आ गया। मगर छोड़ो, ये बताओ इमरान साहब कहाँ है? ब्लैक जीरो ने कहा। साहब अपने कमरे में ही होंगे, क्यों? सुलेमान ने कहा। कुछ नहीं, आओ मेरे साथ, ब्लैक जीरो ने कहा। तो सुलेमान सर हिलाकर बिस्तर से उतर आया। उसने हाथ में पकड़ा हुआ पिस्टल तकिए के नीचे रखा और जूते पहनकर ब्लैक जीरो के साथ कमरे से बाहर आ गया। लेकिन ताहिर साहब, खैरियत तो है ना? रात को इस वक्त आप को यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई है? सुलेमान ने कदरे परेशान होते हुए कहा। अभी बताता हूँ, तुम आओ, ब्लैक जीरो ने कहा और वो दोनों इस तरफ बढ़ते चले गए जिस तरफ इमरान का कमरा था। इस तरफ आकर वो दोनों बेख्तियार ठिटक कर रुक गए। उनकी नजरें जोसेफ पर जम गई थी, जो बदस्तूर इमरान के कमरे के बंद दरवाजे के सामने खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। वो दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाए एक टांग पर खड़ा था और उसका जिस्म इस बुरी तरह से कांप रहा था जैसे वो शदीद गुस्से में हो। ये कालिया यहाँ क्या कर रहा है? सुलेमान ने जोसेफ को इस हालत में देखकर हैरत भरे लहजे में कहा। ब्लैक जीरो ने उसे खामोश करते हुए कहा। वो भी हैरत नजदा नजरों से जोसेफ की तरफ देख रहा था। जोसेफ का ये पुरेसरार अंदाज उसके लिए वाकई नया और हैरत अंगेज था। जोसेफ, ये तुम क्या कर रहे हो? ब्लैक जीरो ने आगे बढ़कर जोसेफ से मुखातिब होकर हैरत भरे लहजे में कहा। लेकिन जोसेफ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होंठ तेजी से हिल रहे थे। यूं लग रहा था जैसे वो कुछ पढ़ रहा हो। जोसेफ, ब्लैक जीरो ने उसे जोर से आवाज दी, लेकिन जोसेफ के अंदाज में कोई फर्क नहीं आया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे ब्लैक जीरो की आवाज सुन ही ना रहा हो। ये बदबخت ऐसे नहीं बोलेगा, मैं इसके सर पर जूता मारूंगा तभी इसकी जबान खुलेगी, सुलेमान ने कहा और तेजी से जोसेफ की तरफ बढ़ा। लेकिन उससे पहले कि वो जोसेफ के करीब पहुंचता, अचानक जोसेफ ने आंखें खोलकर गर्दन घुमाकर उसकी तरफ घूरना शुरू कर दिया। उसका चेहरा इस कदर भयानक हो रहा था कि सुलेमान के कदम यकलक तफली जगह जम गए। जोसेफ की आंखें कबूतर के खून की तरह सुर्ख हो रही थीं। अरे बाप रे, इसमें तो कोई बदरू घुसी हुई है, सुलेमान ने सहमे हुए लहजे में कहा। जोसेफ, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? सुलेमान कह रहा है इमरान साहब अंदर हैं, ब्लैक जीरो ने जोसेफ के करीब जाते हुए कहा। बॉस अंदर नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है, जोसेफ ने गुर्राते हुए कहा। तो उसकी बात सुनकर ब्लैक जीरो और सुलेमान चौंक पड़े। क्या क्या कहा तुमने, इमरान साहब अंदर नहीं है? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। साथ ही उसने आगे बढ़कर इमरान के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि जोसेफ ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया। दरवाजे को हाथ मत लगाना वरना जलकर भस्म हो जाओगे, अंदर गामा नाशी का नीला धुआं रफ्त कर रहा है, इस नीले धुएं में जहरीली चमगादड़े हैं, अगर तुमने दरवाजे को हाथ लगाया तो वो दरवाजे को जलाकर बाहर आ जाएंगी और फिर वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगी, जोसेफ ने कहा। तो ब्लैक जीरो और सुलेमान हैरत से इसकी सूरत देखने लगा। गामा नाशी का नीला धुआं, चमगादड़े, जोसेफ ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ब्लैक जीरो ने झल्लाए हुए लहजे में कहा। उसे शायद जोसेफ की अजीब और गरीब बातों पर गुस्सा आ रहा था, जो न जाने किस दौर की नाकाबिले फहम बातें कर रहा था। मेरी बात समझने की कोशिश करो, जोसेफ के हलक से गुर्राहट नुमा आवाज निकली। क्या खाक तुम्हारी बातें समझने की कोशिश करूं? कभी तुम ख्वाब में जर्द दागन के सुर्ख अंडे देखते हो और कभी कहते हो कि बॉस को जमैका के काले गिद्ध उठा कर ले गए हैं। कभी तुम कहते हो कि अनाथा देवी इमरान साहब की भेंट मांग रही है। अभी कह रहे हो कि इमरान साहब के कमरे में गामा नाशी का नीला धुआं नाच रहा है जिसमें जहरीली चमगादड़े हैं। ये सब क्या है, तुम अपने होश में हो या नहीं, ब्लैक जीरो ने झल्लाए हुए लहजे में कहा। तुम मेरी बातों को झुठला रहे हो, मगर मैंने जो कुछ कहा है इसका एक एक लफ्ज सच है। ठहरो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सुलेमान, छुरी लाओ, जोसेफ ने ब्लैक जीरो की बात का जवाब देते हुए सुलेमान से कहा। छुरी? क्यों, छुरी से अपनी नाक काटने का इरादा है? सुलेमान ने कहा। बको मत, जो कह रहा हूँ वो करो जल्दी। मैं तुम दोनों को गामा नाशी का नीला धुआं और बॉस के कमरे की हालत दिखाना चाहता हूँ, जोसेफ ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं तुम्हारी अहमकाना बातों पर यकीन नहीं करता, तुम्हारा साहब के हाथों जूते खाने को दिल चाह रहा है इसलिए तुम यहाँ आए हो। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं तो चला अपने कमरे में, सुलेमान ने बेजार से लहजे में कहा और साथ ही वो जाने के लिए पलट पड़ा। तुम कहीं नहीं जाओगे, जोसेफ ने हलक के बल गुर्राते हुए कहा। क्यों, मैं तुम्हारे नेगरू बाप का मुलाजिम हूँ जो तुम्हारा हुक्म मानूंगा, सुलेमान ने कहा। रुक जाओ सुलेमान, देखो तो सही आखिर ये करने क्या जा रहा है। तुम कह रहे हो कि इमरान साहब अंदर हैं और जोसेफ का कहना है कि इमरान साहब अंदर मौजूद नहीं है। कमरे का दरवाजा बंद है और ये अंदर से लॉक मालूम हो रहा है, जिसका मतलब है कि तुम्हारी बात सही है, इमरान साहब अंदर ही मौजूद हैं। फिर देखें तो सही जोसेफ की बात कहाँ तक दुरुस्त है। वैसे भी इस वक्त इसकी हालत ऐसी हो रही है जैसे इसने बेशुमार बोतलें पी रखी हों। अगर ऐसा है तो इससे इमरान साहब खुद ही निपट लेंगे, ब्लैक जीरो ने सुलेमान को समझाते हुए कहा। तो सुलेमान रुक गया, जो कमरे में जाने के लिए कदम उठा चुका था। ब्लैक जीरो के रिमार्क्स पर जोसेफ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा उसी तरह बिगड़ा हुआ था और उसकी आंखें बदस्तूर खून उगलती दिखाई दे रही थीं। ब्लैक जीरो ने जेब से एक छोटा सा खंजर निकालकर जोसेफ की तरफ बढ़ाया। इस खंजर से काम चल जाएगा, ब्लैक जीरो ने कहा। तो जोसेफ ने सर हिलाकर उससे खंजर ले लिया। सुलेमान ब्लैक जीरो के करीब आया और तमस खुराना नजरों से जोसेफ की तरफ देखने लगा। जोसेफ ने अपनी दूसरी टांग जमीन पर रखी और फिर इसने आंखें बंद करके इस पर कुछ पढ़कर फूंकना शुरू कर दिया। चंद लम्हों तक वो खंजर पर कुछ पढ़कर फूंकता रहा, फिर इसने अचानक अपने दाएं हाथ की हथेली में खंजर की नोक उतार दी। उसे इस तरह हथेली पर खंजर मारते देखकर ब्लैक जीरो और सुलेमान दोनों चौंक पड़े। जोसेफ ने हथेली पर जख्म लगाकर खंजर जेब में रखा और अपने हाथ में जमा होने वाले खून पर कुछ पढ़कर फूंकने लगा। फिर उसने अचानक इस खून को इमरान के कमरे के दरवाजे पर छिड़क दिया। जैसे ही खून के छींटे दरवाजे पर पड़े, जोरदार छनाके की आवाज सुनाई दी। यूं महसूस हुआ जैसे आग में तपती हुई फौलादी चादर पर पानी के छींटे पड़े हों। और फिर ब्लैक जीरो और सुलेमान ने जोसेफ के खून के छींटों को भाप बनकर उड़ते देखा तो उनकी आंखें हैरत की ज्यादती से फैलती चली गईं। मगर जोसेफ जैसे उनकी तरफ मुतवज्जा ही नहीं था। वो बार बार खून के छींटे दरवाजे पर फेंक रहा था। हर बार छनाके की आवाज के साथ उसका खून धुआं बनकर उड़ जाता था। मैंने जहरीली चमगादड़ों को भगा दिया है, आओ अब कमरे में चलें, जोसेफ ने ब्लैक जीरो और सुलेमान से मुखातिब होकर कहा। उसने अपना जख्मी हाथ हैंडल के दरवाजे पर रखा तो फिर एक छनाके की आवाज सुनाई दी और जोसेफ के हाथ से भाप नुमा धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। मगर जोसेफ के चेहरे पर किसी तकलीफ का तासुर नहीं उभरा। उसने हैंडल घुमाया तो कमरे का दरवाजा खुलता चला गया, जो शायद अंदर से लॉक नहीं था। जोसेफ ने दरवाजा खोला और तेजी से अंदर दाखिल हो गया। ब्लैक जीरो और सुलेमान भी कमरे में दाखिल हुए। कमरे में तारीकी छाई हुई थी। उसी लम्हे चट की आवाज के साथ कमरा रोशन हो गया। शायद जोसेफ ने कमरे की लाइट जलाई थी। लेकिन जैसे ही कमरे में रोशनी हुई, ब्लैक जीरो और सुलेमान इस बुरी तरह से उछल पड़े जैसे अचानक उनके कदमों में किसी ने बम दे मारा हो और वो एक धमाके से फट गया हो। कमरे की हालत देखकर सुलेमान तो किसी भी तरह अपने हलक से निकलने वाली चीखें ना रोक सका था। अलबत्ता ब्लैक जीरो की आंखें हैरत से फैलकर उसके कानों से जा लगी थीं। इमरान को बुरी तरह से झिंझोड़ा जा रहा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके सर पर कोई जोरदार हथौड़े मार रहा हो। धम धम ताना नाना धम धम, अजीबो गरीब आवाजें इमरान की समाध से टकराई और इमरान ने घबराए हुए आंखों अंदाज में आंखें खोल दी। उसकी आंखों के सामने हनूस तारीकी का राज था और वो खुद को उसी बिस्तर पर मौजूद पा रहा था जहां उसकी पहले आंख खुली थी। होश में आते ही उसके जहन में पिछला मंजर किसी फिल्म की तरह चलने लगा। उसकी आंखें अपने फ्लैट के कमरे की बजाय एक लकड़ी के बने हुए कोठरी नुमा कमरे में खुली थी जहां हर तरफ तारीकी छाई हुई थी। और फिर इमरान अंधेरे में आंखें फाड़कर सुलेमान को आवाज दे देने लगा तो कमरे का दरवाजा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ जिसने इमरान से अजीब सी जबान में बातें की थी। मगर इसकी जबान इमरान की समझ में नहीं आई। फिर वो शख्स चला गया और कुछ ही देर में अपने किसी और साथी को वहां ले आया जिसने इमरान की जबान में टूटे फूटे अंदाज में उससे बातें शुरू की। और फिर वहां अचानक तेज सुर्ख रोशनी हो गई। इस सुर्ख रोशनी ने एक लम्हे के लिए इमरान की आंखों में जैसे आग सी भर दी थी। मगर फिर जब इमरान देखने के काबिल हुआ तो इसने अपने सामने दो अजीबुल खलकत सियाह फाम इंसानों को खड़े पाया जिनमें से एक दुबला पतला सियाह फाम था, इसके हाथ में नेजा था और दूसरा एक अधेड़ उम्र मगर भारी तनोतोष वाला सियाह फाम था, इसके हाथ में तिरछूल था। इन दोनों के सर गंजे थे और इन दोनों ने जिस्म के निचले हिस्सों पर सुर्ख लंगोट बांध रखे थे। दुबले सियाह फाम ने इमरान को अपना नाम पालोग और दूसरे का नाम सरदार जोजाका बताया था। उसने सरदार जोजाका को अपनी जबान में कुछ कहा था जिसे सुनकर वो वहां से चला गया। और जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक प्याला था जिसमें से भाप उठ रही थी। पालोग ने इस प्याले में मौजूद महलूल इमरान को पीने के लिए कहा। जब इस प्याले में इमरान की नजर पड़ी तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे इसमें खून भरा हो। खून को देखकर इमरान को इन दोनों पर शदीद गुस्सा आया जिसकी वजह से उसने गुस्से और नफरत से सरदार जोजाका के हाथों में मौजूद प्याले को हाथ मारकर दूर गिरा दिया था। उसे इस तरह प्याला फेंकते देखकर पालोग को गुस्सा आ गया था और उसने गुस्से से इमरान को कहा था कि तुम मरोगे, तुम मरोगे, तुम पर अनाता का कहर टूटेगा। ये कहकर उसने अपने हाथों में मौजूद नेजे का रुख इमरान की जानिब कर दिया था जिसमें एक लख्त जर्द रंग की रोशनी की लहरें से निकलकर इमरान से टकराई थी। और इमरान को यूं महसूस हुआ था जैसे उसके सीने पर एक लख्त मनोवजनी गुर्ज मार दिया गया हो। उसके मुंह से चीखें निकली थीं और वो अपनी जगह से उछलकर पूरी कुव्वत के साथ पीछे लकड़ी की दीवार से जा टकराया था और फिर बेहोश हो गया था। उसके बाद उसे अब होश आ रहा था। उसे यूं महसूस हुआ था जैसे किसी ने उसे झिंझोड़ कर जगाया हो। उसके कानों में मुसलसल धम 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 ताना नाना की आवाजें आ रही थीं। धम धम की आवाजें तो ढोल बजने की थीं, जिसकी लय पर बहुत से इंसान खास अंदाज में ताना नाना कह रहे थे। इमरान की पेशानी पर लातादात छींकने फैली हुई थीं। उसे अभी तक इस बात की हैरत थी कि वो अपने फ्लैट से इस अजीब और गरीब और पुरसरार जगह पर कैसे आया, और वो सिया फाम गंजे कौन थे, और इनके पास ऐसी कौन सी ताकत थी जिसकी वजह से उन्होंने नेजे से इस पर रोशनी फेंक कर उसे इस बुरी तरह से जमीन पर उठाकर फेंका था। इसके अलावा इन लोगों के अल्फाज, उनकी जबान और उनका रवैया इमरान को बेहद अजीब और पुरिसरार सा मालूम हो रहा था। अब ये ढोल की धम धम और ताना नाना के अल्फाज उसके दिलो दिमाग पर वाकई हथौड़े की तरह बरस रहे थे। इमरान को इस बात पर भी हैरत हो रही थी कि जब पालोग ने इस पर नेजे से रोशनी फेंकी थी, उसी वक्त उसे यह महसूस हुआ कि जैसे उसके सीने पर जबरदस्त अंदाज में गुर्द मारा गया हो, और जिस पर वो उछलकर पीछे लकड़ी की दीवार से टकराया था। उसे यूं महसूस हुआ था जैसे उसके जिस्म की सारी हड्डियां टूट गई हों। मगर अब उसे जब होश आया तो उसे अपने जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ का जरा सा भी एहसास नहीं था। ये मैं किस जगह और किन लोगों में आ गया हूँ? ये लोग तो मुझे जोजफ की कबील के मालूम होते हैं, मगर ये लोग कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? इमरान ने हैरत से बड़बड़ाते हुए कहा। उस वक्त कमरे का दरवाजा खुला तो आवाज सुनकर इमरान चौंक पड़ा और आंखें फाड़ फाड़ कर उसी तरफ देखने की कोशिश करने लगा। कौन है? इमरान ने पूछा। ओह, तुम्हें होश आ गया। दरवाजे के पास से एक आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज और इसके तलफ़ुज़ इमरान को बिल्कुल सही सुनाई दिए, और आने वाले ने इमरान की ही जबान में बात की थी, और ये आवाज उसी पालोग की थी जिसने इमरान पर नेजे से रोशनी फेंक कर उसे बेहोश किया था। होश तो आ गया है, मगर अब तुम्हारा लहजा दुरुस्त है। पहले तुम्हें क्या हो गया था? इमरान ने हैरान होते हुए कहा। पहले सरदार जोजा का साथ था, इसलिए मैं रवानी से बात नहीं कर सकता था। अब तुम खुद को कैसा महसूस कर रहे हो? पालोग ने कहा। खुद को इस अजीब और गरीब और पुरसरार माहौल में पाकर मेरा बार बार बेहोश होने का दिल चाह रहा है, इमरान ने शोक लहजे में कहा। तुमने अगूमों को क्यों गिरा दिया था? पालोग ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। उसके लहजे में हैरत के साथ साथ कदरे गुस्सा भी था। अगूमो, वो खून? मैं इंसान हूँ, खून आशाम दरिंदा नहीं, इमरान ने इस प्याले में मौजूद खून का ख्याल आते ही नफरत भरे लहजे में कहा। अगूमो खून नहीं था, वो अनाथा देवी का अमृत था। तुमने उसे खून समझकर गिरा दिया था, पालोग ने कहा। अनाथा देवी का अमृत? क्या मतलब? ये अनाथा देवी कौन है? इमरान ने चौंक कर पूछा। अनाता देवी जंगूना के जंगलों की देवी है, संगलाख जंगलों की देवी, पालोग ने कहा। उसकी बातें सुनकर इमरान बुरी तरह चौंक पड़ा। क्या क्या कहा तुमने? जंगूना जंगल? तुम्हारा मतलब है मैं इस वक्त ब्राजील के घने तारीख और पुरिसरार जंगलों में हूँ? इमरान ने शदीद हैरत के आलम में कहा। हाँ, तुम जंगूना के सबसे घने और सबसे ज्यादा तारीख जंगल में हो, पालोग ने कहा। तो इमरान का चेहरा वाकई हैरत की ज्यादती से बिगड़ता चला गया। ओह, मगर मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो अपने फ्लैट में सो रहा था। क्या मुझे यहाँ अगवा करके लाया गया है? इमरान ने पूछा। हाँ, तुम्हें यहाँ के विच डॉक्टरों ने अगवा किया है। उन्होंने तुम्हारे फ्लैट में जमैका के काले गिद्ध भेजे थे जो तुम्हें वहां से उठाकर यहाँ लाए हैं, पालोग ने कहा। विच डॉक्टर? जमैका के काले गिद्ध? क्या मतलब? मैं समझा नहीं, इमरान ने बदस्तूर हैरान होते हुए कहा। सब समझ आ जाएगा तुम्हें, वक्त का इंतजार करो, हर चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी, पालोग ने कहा। क्या बकवास है, सच सच बताओ तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? इमरान ने उसकी बात सुनकर गुस्सीले लहजे में कहा। मैं यहाँ का विच डॉक्टर पालोग हूँ। तुम्हें यहाँ अगवा करके कौन लाया है वो मैंने बता दिया है। क्यों लाया गया है इसका जवाब मैं अभी तुम्हें नहीं दे सकता, वक्त आएगा तो तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा, पालोग ने इस बार कदरे दुरुस्त लहजे में कहा। देखो पालोग, या जो भी तुम्हारा नाम है, मुझे बताओ ये सब क्या है? तुम कौन हो और मुझे इस तरह अगवा करके यहाँ लाने का तुम लोगों का क्या मकसद है? इसके अलावा यहाँ इस कदर तारीकी क्यों है और ये बाहर धम धम की कैसी आवाजें हैं? इमरान ने होठ चबाते हुए कहा। आज की रात आराम कर लो, कल तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैं अब यही देखने आया था कि तुम्हें होश आया है या नहीं। तुम होश में हो, ये अच्छी बात है, विच डॉक्टर पालोग ने कहा। तुमने नेजे से रोशनी फेंक कर मुझे बेहोश क्यों किया था? इमरान ने पूछा। मेरी मजबूरी थी। बहरहाल ये सब बातें बाद में बताऊंगा, अब मैं जा रहा हूँ, पालोग ने कहा। इमरान कुछ सोच सोच कर छलांग मारकर बिस्तर से उठा और तेजी से उस तरफ बढ़ा जिस तरफ से उसे पालोग की आवाज आ रही थी। लेकिन अभी उसने दो तीन ही कदम उठाए होंगे कि अचानक उसे यूं लगा जैसे उसके दोनों पैर जमीन ने जकड़ लिए हों। नहीं इमरान, मेरी तरफ आने की कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हारे नजदीक होते हुए भी तुमसे बहुत दूर हूँ, पालोग ने सख्त लहजे में कहा। तो इमरान ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। वो जमीन से पैर उठाने के लिए पूरा जोर लगा रहा था मगर उसे सचमुच यूं लग रहा था जैसे उसके दोनों पैर पत्थर की तरह सख्त और वजनी हो गए हैं और जिन्हें उठाना तो एक तरफ, वो मामूली सी जुम्बिश भी नहीं दे पा रहा था। अब मैं जा रहा हूँ, मेरे जाते ही तुम्हारे पैर पैर ठीक हो जाएंगे। पैरों के ठीक होते ही तुम अपनी जगह वापस चले जाना, वरना जहाँ तुम खड़े हो वहाँ अब हर तरफ सुख चीटे रेंग रहे होंगे जो मेरी वजह से तुम्हारे करीब नहीं आ रहे, मगर मेरे जाते ही ये सब तुम पर चढ़ दौड़ेंगे। इनमें से अगर किसी एक चींटे ने तुम्हें काट लिया तो तुम्हारा हशर बहुत बुरा होगा, पालोग ने कहा। उसकी बातें सुनकर इमरान को अपने दिमाग में अजीब सी सरसराहट सी महसूस होने लगी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वाकई जमीन पर रेंगने वाले सुर्ख चींटे उसके दिमाग में चढ़ गए हों। उसी लम्हे उसने कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ अचानक उसके पैरों को जैसे जमीन ने छोड़ दिया। अपने पैरों को नॉर्मल होता हुआ महसूस करके इमरान तेजी से हरकत में आया और वो एक ही छलांग में उस जगह पहुंच गया जहां उसके ख्याल के मुताबिक दरवाजा था। उस जगह पर हाथ मारकर दरवाजा तलाश करने लगा मगर लकड़ी की दीवार बिल्कुल सपाट थी, वहां किसी रखने या दरज की मौजूदगी का पता नहीं चलता था। उसी लम्हे इमरान को सचमुच अपने पैरों पर बेशुमार चींटियों के चढ़ने का एहसास हुआ। वो बौखला गया था। उसने जोर जोर से पैर झटके और छलांगे मारता हुआ दोबारा उसी चारपाई पर आ गया जिस पर वो बेहोशी के आलम में पड़ा हुआ था। चारपाई पर आते ही वो अंधेरे में जमीन पर रेंगने वाले चींटियों को देखने की कोशिश करने लगा जिनकी हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें उसे सुनाई दे रही थीं। लगता है मैं अभी तक नींद में हूँ और ये भयानक ख्वाब देख रहा हूँ, अनाता देवी, ब्राजील का जंगल, अगुमो, ये कैद खाना और सुर्ख चींटे। हूँ ये तिलिस्माती वाकयात कहानियों या फिर ख्वाब में ही नजर आते हैं, इनका हकीकत से क्या ताल्लुक? और वो भी इस जदीद दौर में, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके लहजे में वाकई शदीद हैरत थी जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि वो इस वक्त एक पुरिसरार और मावराई दुनिया में मौजूद है जहाँ की हर चीज अपने अंदर हैरत और इसरार समोए हुए है। उसने अपने दाएं रान पर जोरदार चुटकी भरी जैसे वो जानना चाहता हो कि वो नींद में है या जाग रहा है और फिर वो बुरी तरह उछल पड़ा। अरे बाप रे, मुझे तो तकलीफ का एहसास हो रहा है, इसका मतलब है ये कोई ख्वाब नहीं है, मैं जाग रहा हूँ और इस वक्त वाकई मैं ब्राजील के खौफनाक जंगलों में हूँ और ये जो कुछ हो रहा है हकीकत में हो रहा है, इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। उसी लम्हे अचानक कमरे में पहले की तरह तेज सुर्ख रोशनी फैल गई तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। उसने चारों तरफ देखा मगर उसे ये मालूम नहीं हो सकता था कि वहां रोशनी कैसे और कहाँ से आ रही थी। सुर्ख रोशनी लकड़ी की दीवारों से फूटती हुई महसूस हो रही थी और लकड़ी की दीवारें बिल्कुल सपाट थीं। बड़े बड़े तख्तों की बनी हुई दीवारों में एक मामूली सा रखना भी दिखाई नहीं दे रहा था और न ही इमरान को वो दरवाजा दिखाई दे रहा था जहां से सरदार जोजा का और ये पालोग अंदर आया था। वहां दरवाजे का निशान ना पाकर इमरान चकरा कर रह गया था और फिर उसकी जमीन जैसे ही नजर उसकी जमीन पर पड़ी तो वाकई उसके चेहरे पर बेपनाह बौखलाहट नजर आने लगी। जमीन पर हर तरफ सुर्ख रंग के चींटे नजर आ रहे थे और इन चींटों के सर सियाह थे और वो आम चींटों से कहीं बड़े थे। यूं लग रहा था जैसे सारी जमीन इन्हीं चींटियों से भर गई हो। क्योंकि जमीन का कोई हिस्सा इन चींटियों से खाली नजर नहीं आ रहा था। और इमरान बेख्तियार अपना सर पर हाथ रखकर रह गया। बाहर से उसे बदस्तूर धम धम ताना नाना की आवाजें सुनाई दे रही थीं। न जाने वो कौन लोग थे और ढोल की धम धम पर ताना नाना का राग क्यों अलाप रहे थे। उनकी धम धम और ताना नाना की आवाजें एक बार फिर इमरान के दिलो दिमाग में हथौड़े की तरह बरसना शुरू हो गईं। शायद ये वहां के माहौल का असर था, या फिर इमरान खुद कोई सजीव और पुरिसरार जगह पर पाकर वाकई हैरत के समंदर में गोताजन था। कमरे में नीले रंग के धुएं के हल्के हल्के मरगोले नाच रहे थे, जिनकी तादाद बेहद ज्यादा थी। वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर घूमते जा रहे थे, जो देखकर ब्लैक जीरो और सुलेमान उछल गए थे। वो कमरे का सामान था जो वहां जलकर राख बना हुआ था। कमरे की कोई चीज सलामत नहीं थी। यूं लग रहा था जैसे कमरे में जबरदस्त आग लगी हो और उसने वहां मौजूद हर चीज को जलाकर राख कर दिया हो, लेकिन कमरे में आग लगने के कोई आसार नहीं थे। फर्श और कमरे की दीवारें साफ सुथरी नजर आ रही थीं। छत पर लगा पंखा और बल्ब भी दुरुस्त हालत में थे। अगर वहां आग लगी होती तो दीवारों पर और फर्श पर भी सियाह धब्बे होते। कमरे में मौजूद इमरान का बेड, सोफा और जमीन पर मौजूद दूसरी चीजों का अलबत्ता वहां कोई निशान बाकी नहीं बचा था। हर तरफ उन चीजों की राख बिखरी हुई थी, जिसकी वजह से सुलेमान अपने हलक से निकलने वाली चीख को किसी भी तरह रोक नहीं पाया। ओह, ये सब क्या है? ये सब चीजें कैसे जल गईं? और इमरान साहब, ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस अभी तक जिंदा है, जोजफ ने कहा। उसके लहजे में वही गुर्राहट थी और उसका चेहरा बदस्तूर भयानक नजर आ रहा था। वो ब्लैक जीरो और सुलेमान की जानिब ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे कह रहा हो कि अब बताओ, अब भी इसकी बातों पर यकीन करोगे या नहीं। मगर जोसेफ, ये सब हुआ कैसे? ब्लैक जीरो के मुंह से निकला। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, लेकिन पहले मुझे जमैका के काले गिधों के निशान तलाश करने दो। यहाँ मौजूद चीजों को इसलिए जलाकर राख बनाया गया है कि मैं इन निशानों को तलाश ना कर सकूं। मगर मैं जोसेफ डी ग्रेट हूँ, फादर जोश वाका का मंजूर नजर और उसका चहीता जंगल प्रिंस। मेरी नजरों से वो निशान गायब नहीं हो सकते। अगर वो इस कमरे को भी राख का ढेर बना देते तो मैं तब भी जमैका के काले गिधों के निशान को ढूंढ देता, जोसेफ ने फाखराना लहजे में कहा। ताहिर साहब, क्या जोसेफ सच कह रहा है? क्या वाकई साहब जिंदा हैं? सुलेमान ने परेशानी के आलम में आंखें फाड़ फाड़ कर कमरे में बिखरी हुई राख को देख कर कहा। मेरी बात पर यकीन करो सुलेमान, बॉस अभी जिंदा है, और जब तक जोसेफ दी ग्रेट जिंदा है, बॉस का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो अनाता देवी हो या तारीख जंगलों के विच डॉक्टर, जोसेफ ने ब्लैक जीरो के बोलने से पहले कहा। वो तो ठीक है जोसेफ, लेकिन वो है कहाँ? रात को तो वो अपने कमरे में ही सोए थे। सुलेमान ने इसकी तरफ परेशान होते हुए देखा। कमरे की हालत और इमरान की वहां गैर मौजूदगी ने उसे सचमुच परेशान कर दिया था और उसका चेहरा लट्ठे की तरह सफेद नजर आ रहा था। वो कहाँ है? उसका पता लगाने के लिए मुझे जमैका के काले गिधों के निशान तलाश करना पड़ेंगे। एक बात तो तय है कि बॉस की जिंदगी इस वक्त शदीद खतरे में है। मुझे उन तक पहुंचने के लिए जल्द अज जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें अगर बॉस से मोहब्बत है तो फिर मैं जैसा कहूँ करते जाओ, जोसेफ ने कहा। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, सुलेमान ने जल्दी से कहा। गुड, ताहिर साहब आप ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाएं। मैं यहाँ एक अमल करना चाहता हूँ। इस अमल के जरिए ही मैं मालूम कर सकूंगा कि बॉस कहाँ है और किस हाल में है, और ये कि उन तक मैं किस तरह पहुंच सकता हूँ, जोसेफ ने ब्लैक जीरो से मुखातिब होकर कहा। तो ब्लैक जीरो ने ना चाहते हुए भी इस बात में सर हिला दिया। सुलेमान, ताहिर साहब की कार में एक थैला है, वो ले आओ, जोसेफ ने सुलेमान से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, सुलेमान ने कहा। नहीं, फिलहाल मुझे यही थैला चाहिए, अगर किसी और चीज की जरूरत होगी तो बता दूंगा, जोसेफ ने कहा। तो सुलेमान ने ब्लैक जीरो की जानिब सवालिया नजरों से देखा, तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। सुलेमान ने जवाब में सर हिलाया और फिर खामोशी से कमरे से बाहर निकलता चला गया। तुम्हें अपने अमल में कितना वक्त लगेगा? ब्लैक जीरो ने सुलेमान के जाने के बाद जोसेफ से मुखातिब होकर पूछा। चंद घंटे भी लग सकते हैं, चंद दिन भी और चंद हफ्ते भी, जोसेफ ने कहा। क्या मतलब? इसकी बात सुनकर ब्लैक जीरो ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा, ताहिर साहब, ये विच डॉक्टरों का मामला है और वो सब अनाता देवी के पुजारी हैं। उन्होंने जमैका के काले गिद्धों को भेजकर बॉस को अगवा कराया है। जिस जगह वो रहते हैं वो तारीकी की सरजमीन है और इस तारीकी में झांकने के लिए मुझे कठिन अमल करना होंगे जिसमें मुझे खासा वक्त लग सकता है। जोसेफ ने फौरन जवाब देते हुए कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि इमरान साहब के अगवा के पीछे शैतानी कुव्वतों का हाथ है? ब्लैक जीरो ने गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहा। पार्ट 1 यहाँ इख्तिताम पजीर होता है।